एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में उतरने वाले हैं जिसने पिछले कुछ सालों में साहित्य जगत में काफी धूम मचाई है। ब्रिट बेनेट की द वैनिशिंग हाफ। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि पहचान, परिवार और उन रहस्यों पर एक गहरी सोच है जो हम मतलब जिंदगी भर अपने साथ लेके चलते हैं।
बिल्कुल। और ये कहानी ना एक सीधे से सवाल से शुरू होती है। क्या आप अपनी पहचान को, अपने अतीत को, अपने खून को पूरी तरह से मिटाकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं?
और अगर कर भी लें तो उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है?
हाँ, वही। ये उपन्यास इसी सवाल की एक एक परत खोलता है, और कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, आप और भी उलझते जाते हैं, चौंकते जाते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी की नींव से, जो एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखी और काल्पनिक जगह पर रखी गई है,
लुइजियाना का एक शहर, मलार्ड।
और इस शहर की बात ही कुछ और है। इसे बसाया तो अश्वेत लोगों ने था, पर वहां एक अजीब सी शर्त थी।
जी, शर्त ये थी कि आपके त्वचा का रंग बिल्कुल गोरा होना चाहिए। ये अपने आप में ही एक एक चौंकाने वाला विरोधाभास है।
सही बात है, मतलब नस्लवाद से बचने के लिए एक ऐसी जगह बनाना जो खुद ही त्वचा के रंग को लेकर भेदभाव करती हो।
बिल्कुल। यह शहर बाहर से तो अश्वेत आत्मसम्मान का प्रतीक लगता है, पर अंदर से ये उसी वर्ण भेद की मानसिकता पर बना है जिससे वो लोग भाग रहे थे।
और इसी उलझे हुए माहौल में हमारी कहानी की दो मुख्य किरदार जन्म लेती हैं, डिजायर और स्टेला विग्नेस।
जुड़वा बहनें, जो एक दूसरे की हूबहू नकल है, एक दूसरे की परछाई जैसी, लेकिन उनकी जिंदगी की शुरुआत एक बहुत बड़े सदमे से होती है।
उनके पिता की कुछ श्वेत लोगों द्वारा बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, और ये घटना दोनों बहनों के मन पर एक बहुत गहरा घाव छोड़ जाती है।
हाँ, और 16 साल की उम्र में वो दोनों इस घुटन भरी जिंदगी और उस डरावनी याद से दूर भागने का फैसला करती हैं। ये एक साथ उनका आखिरी सफर होगा।
और यहीं से कहानी का वो कहते ना दिल दहलाने वाला हिस्सा शुरू होता है। न्यू ऑर्लियंस पहुंचकर दोनों की राहें हमेशा के लिए अलग हो जाती हैं।
स्टेला, जो हमेशा से शांत और पढ़ाकू थी, एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।
क्या करती है वो?
स्टेला अपनी अश्वेत पहचान को हमेशा के लिए दफनाने का फैसला करती है।
मतलब वो अपनी गोरी त्वचा का फायदा उठाकर एक श्वेत महिला के रूप में अपनी नई जिंदगी शुरू करती है।
वो अपने अमीर श्वेत बॉस से शादी कर लेती है, जो उसके अतीत के बारे में एक लफ्ज भी नहीं जानता।
सोचिए जरा, इस एक फैसले के लिए वो अपनी बहन, अपना परिवार, अपनी जड़ें, सब कुछ पीछे छोड़ देती है।
ये बहुत बड़ा फैसला था, सिर्फ अपना नाम या पता बदलना नहीं, बल्कि अपने पूरे वजूद को ही नकार देना।
तो बाहर से तो उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती होगी, अमीर पति, बड़ा घर।
हाँ ऐश्वाराम, पर अंदर ही अंदर वो एक झूठ के पिंजरे में कैद है। हर पल इस डर में जीती है कि कहीं कहीं उसका राज खुल ना जाए।
और दूसरी तरफ है डिजायर, उसकी कहानी तो बिल्कुल उल्टी दिशा में जाती है।
बिल्कुल। वो एक सांवले अश्वेत व्यक्ति से शादी करती है, लेकिन वो रिश्ता घरेलू हिंसा का शिकार हो जाता है।
अच्छा,
तो तंग आकर वो अपनी बेटी जूड को लेकर वापस वहीं लौट आती है जहां से वो भागी थी, मलार्ड।
ये बात मुझे बहुत हैरान करती है। एक बहन आजादी के लिए अपनी पहचान छोड़ देती है, और दूसरी शायद सुरक्षा के लिए अपनी उसी पहचान में वापस लौटती है। पर क्या दोनों में से कोई भी सच में आजाद हो पाया?
यही तो इस उपन्यास की खूबसूरती है। दोनों ही अपनी अपनी तरह की कैद में है, है ना?
हाँ।
स्टेला अपनी बनाई हुई सुनहरी दुनिया में सच के डर से कैद है, और डिजायर अपने ही घर मलार्ड में एक अजनबी की तरह।
अजनबी क्यों?
क्योंकि उसकी बेटी जूड की त्वचा का रंग गहरा सांवला है, और ये मलार्ड के गोरेपन के मापदंडों पर खरी नहीं उतरती।
तो उसे और उसकी बेटी को वहां वो सम्मान कभी नहीं मिलता,
कभी नहीं।
और सालों तक ऐसा ही चलता है। दोनों बहनें एक दूसरे से अनजान, दो अलग अलग दुनियाओं में जी रही हैं।
जी।
पर कहानी का असली ट्विस्ट तो तब आता है जब उनकी बेटियों की दुनिया टकराती है।
जी।
जिन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता।
हाँ, कहानी एक दशक आगे बढ़ती है,
और अब फोकस जूट पर है, जिसे मलार्ड में अपनी सावली त्वचा की वजह से हमेशा ताने सुनने को मिले। वो अपनी मेहनत के दम पर लॉस एंजलिस के कॉलेज में स्कॉलरशिप ले लेती है।
वहाँ उसे पहली बार एक तरह की आजादी मिलती होगी, जहाँ कोई उसे उसके रंग से नहीं आंकता।
बिल्कुल। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल रहता है कि उसकी माँ की वो जुड़वा बहन आखिर कहाँ है, जिसका जिक्र भी घर पर कोई नहीं करता। तो वो अपनी उस खोई हुई मौसी स्टेला को खोजने निकल पड़ती है।
और दूसरी तरफ है स्टेला की बेटी कैनेडी। हाँ, कैनेडी। वो कैलिफोर्निया के एक बहुत ही अमीर श्वेत परिवार में पली बढ़ी है। उसे दुनिया की हर सहूलियत मिली है, लेकिन उसे अपनी माँ का स्वभाव हमेशा अजीब लगता है।
अजीब मतलब कैसा?
मतलब उसकी माँ हमेशा उदास, डरी हुई और रहस्यमय सी क्यों रहती है, ये उसे कभी समझ नहीं आता।
और वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है ना?
हाँ, शायद अनजाने में अपनी माँ की ही जिंदगी की नकल करते हुए, जो खुद जिंदगी भर अभिनय ही तो कर रही थी।
और फिर वो पल आता है जब ये दोनों दुनियाएं टकराती हैं।
एक पार्टी में जूट की मुलाकात कैनेडी से होती है, और लंबी खोजबीन के बाद जूट को यकीन हो जाता है कि कैनेडी उसी की चचेरी बहन है।
और वो उसे सच बता देती है।
हाँ, वो कैनेडी को सब सच बता देती है कि उसकी माँ स्टेला, जिसे वो एक श्वेत महिला समझती है, असल में एक अश्वेत है जिसने अपनी पहचान, अपने परिवार और अपनी जुड़वा बहन को सालों पहले त्याग दिया था।
उस पल ने मुझे सच में हिलाकर रख दिया था। आप सोचिए कैनेडी की हालत, आपकी पूरी जिंदगी, आपकी पहचान एक झूठ पर टिकी हो और अचानक कोई आकर आपको ये बताए।
ये रहस्योद्घाटन कैनेडी की दुनिया को उलट पुलट कर देता है। उसे पहली बार अपनी माँ के डर और उदासी की वजह समझ आती है।
और ये उपन्यास पहचान के इसी सवाल को बहुत गहराई से कुरेदता है। क्या पहचान वो है जो हमें जन्म से मिली, या वो जो हम खुद बनाते हैं?
सही बात। स्टेला ने समाज में स्वीकृति पाने के लिए अपनी नस्ले पहचान बदल दी। वहीं कहानी में एक और किरदार है, जूट का बॉयफ्रेंड रीस। वो एक ट्रांसजेंडर पुरुष है।
अच्छा।
वो समाज के बनाए नियमों के खिलाफ जाकर अपनी असली लैंगिक पहचान को अपनाता है।
ये तो बहुत दिलचस्प तुलना है। एक तरफ स्टेला है जो अपनी जन्म की पहचान से भाग रही है,
और दूसरी तरफ रीस है जो अपने जन्म के शरीर से अलग अपनी सच्ची पहचान की ओर भाग रहा है।
दोनों ही समाज की बनाई हुई श्रेणियों को चुनौती दे रहे हैं।
और उपन्यास हमें कोई सीधा जवाब नहीं देता, बस सोचने पर मजबूर कर देता है। और दूसरा बड़ा संदेश जो मुझे लगता है वो ये है कि अतीत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। आप उससे कितना भी भाग लें, वो किसी ना किसी रूप में लौटकर आता ही है।
जैसे स्टेला के साथ होता है।
हाँ, स्टेला लॉस एंजलिस के आलिशान घर में भी अपने पिता की मौत के उन्हीं डरावने सपनों से घिरी रहती है जो उसे मलाड में आते थे। उपन्यास में एक लाइन है, आप एक शहर से तो भाग सकते हैं, पर अपने खून से नहीं।
ये एक पंक्ति तो जैसे पूरी कहानी का सार है।
बिल्कुल।
लेखिका ने प्रतीकों का भी क्या कमाल का इस्तेमाल किया है। मलाड शहर खुद वर्ण भेद का प्रतीक है।
और कैनेडी का एक्ट्रेस बनने का सपना उसकी माँ के जीवन भर के अभिनय का एक रूपक बन जाता है।
और शीर्षक द वैनिशिंग हाफ, मतलब गायब होता आधा हिस्सा। इसके भी कई मतलब हैं।
हाँ, पहली नजर में लगता है कि ये स्टेला के लिए है, जो अपनी जुड़वां बहन को छोड़कर अपनी आधी जिंदगी को ही गायब कर देती है।
पर ये डिजायर के लिए भी है। उसका भी तो आधा हिस्सा उसकी बहन उससे बिछड़ गई।
सही कहा। ये उन सभी किरदारों के लिए है जिन्होंने अपनी पहचान, अपनी खुशी या अपने अतीत का कोई ना कोई हिस्सा खो दिया है।
अब बात करते हैं कहानी के अंत की, जो किसी भी पारंपरिक सुखद अंत जैसा नहीं है, और शायद इसीलिए ये इतना असरदार है।
जी, बहनों की माँ की मौत की खबर जब स्टेला तक पहुँचती है, तो वो भेस बदलकर सालों बाद मलाड लौटती है। वो दूर से अपनी माँ का अंतिम संस्कार देखती है,
और वहाँ उसकी नज़र अपनी बहन डिजायर पर पड़ती है।
हाँ, एक पल के लिए दोनों बहनों की आँखें मिलती हैं, और उस एक नज़र में दशकों का प्यार, गुस्सा, धोखा, तड़प, सब कुछ सिमट आता है।
दिल तो चाहता है कि वो जाकर अपनी बहन से मिल ले, उसे गले लगा ले, पर क्या वो ऐसा करती है?
नहीं,
नहीं करती।
उस एक पल के बाद स्टेला चुपचाप वापस अपनी कार में बैठती है और अपनी उसी झूठी जिंदगी में लौट जाती है।
वो आखिरी मौके पर भी अपने बनाए हुए जीवन को ही चुनती है, और वहीं कहानी खत्म हो जाती है।
ये अंत कहानी को बहुत यथार्थवादी और दर्दनाक बना देता है। ये दिखाता है कि कुछ दरारें कभी नहीं भरती।
स्टेला ने जिस झूठ को इतने सालों तक जिया, वो अब उसकी अपनी सच्चाई बन चुका था। शायद अब उससे बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है।
हाँ, और उपन्यास किसी भी किरदार को सही या गलत नहीं ठहराता, बस हमें उन फैसलों के पीछे की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जटिलताओं को समझने पर मजबूर करता है।
तो आखिर में ये कहानी हमें यही सिखाती है कि पहचान कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जो हमारे फैसलों, हमारे डर और समाज की उम्मीदों के बीच अपना रास्ता बनाता है।
और ये भी कि जिन रहस्यों को हम दफनाने की कोशिश करते हैं, वे कभी मरते नहीं। वो बस ज़मीन के नीचे दबे रहते हैं और आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगी को अनजाने में आकार देते रहते हैं।
ये संवाद यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।